जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल आनंद राधा गोकुल आनंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता दसवां अध्याय चौदहवां श्लोक। इस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। सर्वं एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः।
भगवान् व्यक्ति विदुर्देव ృతమన్యే
జన్మాం వదసి కేశవ
భగవన్ వ్యక్తి
విదుర్దేవాన దానవాః
సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ
నైతే భగవన్ వ్యక్తిం
విదుర్దేవాన దానవాః సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నైతే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవాః సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నైతే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవాః
సర్వం
సబ్
ఏతత్
ఇస్
ఋతం సత్య కో మన్యే స్వీకార్ కర్తా హై యత్ జో మాం ముజ్కో వదసి కహతే హో కేశవ హే కృష్ణ న కభీ నహీ హి నిశ్చయ హి తే ఆప్కే భగవన్ హే భగవాన్ వ్యక్తిం స్వరూప్ కో విదుః జాన్ సక్తే హై దేవాః దేవతాగణ్ న నతో దానవాః అసుర్గణ్. అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. అనువాద్: హే కృష్ణ, ఆప్నే ముజ్సే జో కుచ్ కహా హై ఉసే మే పూర్ణతయా సత్య మాన్తా హూ. హే ప్రభు, న తో దేవతా గణ న అసుర్ గణ హీ ఆప్కే స్వరూప్ కో సమజ్ సక్తే హై. తాత్పర్య: యహాం పర్ అర్జున్ ఇస్కీ పుష్టి కర్తా హై కి శ్రద్ధాహీన తథా ఆసురి ప్రకృతి వాలే లోగ్ కృష్ణ కో నహీ సమజ్ సక్తే. జబ్ దేవతాగణ తక్ ఉన్హే నహీ సమజ్ పాతే తో ఆధునిక జగత్ కే తథా కథిత్ విద్వానో కా క్యా కహనా. భగవత్ కృపా సే అర్జున్ సమజ్ గయా కి పరమ సత్య కృష్ణ హై ఔర్ వే సంపూర్ణ హై. అతః హమే అర్జున్ కే పథ కా అనుసరణ కర్నా చాహియే. ఉసే భగవద్గీతా కా ప్రమాణ ప్రాప్త థా. జైసా కి భగవద్గీతా కి చతుర్థ అధ్యాయ మే కహా గయా హై, భగవద్గీతా కే సమజ్నే కి గురు పరంపరా కా హ్రాస్ హో చుకా థా. అతః కృష్ణ నే అర్జున్ సే ఉస్కీ పునః స్థాపనా కి, క్యోంకి వే అర్జున్ కో అప్నా పరమ ప్రియ సఖా తథా భక్త సమజ్తే థే. అతః జైసా కి గీతోపనిషత్ కి భూమికా మే హమ్నే కహా హై, భగవద్గీతా కా జ్ఞాన పరంపరా విధి సే ప్రాప్త కర్నా చాహియే. పరంపరా విధి కే లుప్త హోనే పర్ ఉస్కే సూత్రపాత్ కే లియే అర్జున్ కో చునా గయా. హమే చాహియే కి అర్జున్ కా హమ్ అనుసరణ కరే, జిస్నే కృష్ణ కి సారీ బాతే జాన్ లీ తభీ హమ్ భగవద్గీతా కే సార్ కో సమజ్ సకేంగే ఔర్ తభీ కృష్ణ కో భగవాన్ రూప్ మే జాన్ సకేంగే. అనువాద్ దోహరాయే. హే కృష్ణ, आपने मुझसे
जो कुछ कहा है
उसे
मैं पूर्णतया
सत्य मानता हूँ।
हे प्रभु,
न तो देवतागण
न
असुरगण
हे
आपके
स्वरूप को
समझ सकते हैं।
ओम
ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे थोड़े प्रश्न हम करेंगे। आप में से कितने भक्त नौकरी करते हैं? ठीक है, तो यदि आप आपके दफ्तर में जाके कहें कि नौकरी किए बिना मुझे आप तनख्वाह दीजिए, बात मानेंगे कोई? नहीं। आप में से कितने भक्त व्यापार करते हैं? अच्छा, तो यदि आपके ग्राहकों से आप कहें आप मुझे मूल्य दीजिए, सामान आपको नहीं दूंगा, केवल मुझे मूल्य दे दीजिए, तो कोई भी ग्राहक मानेगा? नहीं। आप में से कितने भक्त विद्यार्थी हैं, छात्र? तो यदि आप सोचें परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे और न ही हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तो क्या यह संभव है? आप में से कोई दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या बारहवीं में? तो दसवीं कक्षा में कितने विषय होते हैं? छः सात जितने भी हो ना, लेकिन उसमें छः के छः जो हैं वो अनिवार्य होते हैं ना, सब में परीक्षा लिखनी होती। यदि कोई छात्र कहे नहीं नहीं मुझे ये गणित अच्छा नहीं लगता, तो दसवीं कक्षा में गणित में नहीं बैठूंगा, भूगोल अच्छा लगता है, ओ विज्ञान वो अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे SSLC की परीक्षा में पास होना, हो सकता है? नहीं। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम समझ लेते हैं कि यदि हमें कुछ चाहिए तो कुछ और भी स्वीकार करना होगा। केवल हम हमारे मनपसंद की चीजें दुनिया में नहीं ले सकते, मनपसंद की चीजें स्वीकार करने के लिए ऐसे भी कई चीजों को स्वीकार करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है। परीक्षा में नंबर चाहिए तो पढ़ाई भी करनी चाहिए, तनख्वाह चाहिए तो नौकरी भी करनी चाहिए, मूल्य या मुनाफा व्यवसाय में चाहिए तो सामान या माल भी देना चाहिए, बेचना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से हम जब भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमें भगवत गीता को पूर्णतया स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के हर एक श्लोक को, हर एक अंश को, हर एक शब्द को स्वीकार करना चाहिए, हम ऐसे नहीं कह सकते भगवद गीता का ये भाग मुझे अच्छा लगता है, ये मैं स्वीकार करूंगा, और वो भाग सही नहीं है, मैं उसको नहीं मानता, ये मुझे पसंद नहीं है तो ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे संभव नहीं है। या तो हम भगवद गीता को पूरी तरह से माने या फिर पूरी तरह से त्याग दें। फिर ईमानदारी से कह दें कि हम नास्तिक हैं तो फिर आपसे कैसे चर्चा करनी है फिर पता चलेगा। लेकिन आप कहेंगे नास्तिक नहीं है, मानते हैं भगवद गीता को मानते हैं, लेकिन जैसे हम चाहे वैसे हम इसको स्वीकार करेंगे, भगवद गीता के थोड़े भाग को हम स्वीकार करेंगे, उस भाग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता। आपको याद होगा पिछले दो रविवारों से हम न्याय सूत्रों की चर्चा कर रहे थे। दो रविवार पहले कौन से न्याय सूत्र की चर्चा हुई थी? सुप्तोत्थित न्याय, नींद से जागने का न्याय। ये किस बात की पुष्टि करता है या किस तथ्य या सिद्धांत को प्रकाशित करता है कि जब हम नींद से जागते हैं हमें तुरंत याद रहता है कि हमें क्या करना है आगे। ठीक उसी तरह से जब हमें पुनर्जन्म मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करने हैं कर्म। हमारे शरीर इस प्रकार का होता है, मानसिक स्थिति वैसी होती है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे कर्मों को हम कर सकते हैं। तो ऐसे कई सिद्धांतों को समझाने के लिए ऐसे ये न्याय सूत्र हैं। पिछले रविवार को कौन से न्याय सूत्र की चर्चा हुई थी? कूप मंडूक न्याय, अर्थात कुएं में मेंढक का जो न्याय होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया गया था कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे सीमित अनुभव से हम भगवान को जान नहीं सकते, हमारे मानसिक चिंतन से हम भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि हमारा अनुभव तो बहुत छोटा है, हमारी इंद्रियों की पहुंच, हमारी बुद्धि की पहुंच तो बहुत छोटी है, और वो भी गलती हम बहुत कर देते हैं। आंखों के सामने कई बार जो चीजें हैं वो हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए अंधकूप न्याय का अर्थ है कि जैसे एक कुएं में पड़ा हुआ मेंढक जान नहीं सकता कि समुद्र कितना बड़ा है, ठीक उसी तरह से जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो शास्त्रों का आश्रय नहीं लेता, सही प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय नहीं लेता, तो वो कैसे जान पाएगा कि भगवान कौन है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? वो नहीं जान पाएगा, केवल मानसिक चिंतन करते रहेगा, बहस करते रहेगा, परंतु सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बार हम और एक ऐसे न्याय सूत्र की चर्चा करेंगे जिसे कहते हैं अर्धकुक्कुटी न्याय। कुक्कुटी संस्कृत में है मुर्गी। अब यहां हम सब यहां शाकाहारी हैं, ना कोई मुर्गी खाते हैं ना कोई मुर्गी के अंडे खाते हैं, सही है ना? आशा करते हैं हम जो कह रहे हैं सही है। कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाकाहारी हैं लेकिन अंडा खाते हैं, ये भी अर्धकुक्कुटी न्याय होगा। जो चाहिए हम पसंद है वो ले लिया, वो नहीं चाहे वो नहीं ले लिया। शाकाहारी मतलब शाकाहारी, फिर अंडा नहीं, मछली नहीं, कुछ नहीं। जो समुद्र के तट पे लोग रहते हैं वो भी ऐसे कहते हैं। जब हम बंगाल में थे भी एक बार, वो भी कह रहे थे हम वैष्णव हैं लेकिन मछली खाते हैं। ऐसे कैसे वैष्णव हो गए भैया? मछली खाने वाले वैष्णव ऐसे कभी सुना नहीं हमने। वैष्णव है तो फिर मछली भी छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि मछली भी खाएंगे अंडा भी खाएंगे फिर भी हम वैष्णव हैं, ऐसे नहीं होता। ये अर्धकुक्कुटी न्याय है ना, तो ये आधे मुर्गी का न्याय है। तो ये बड़ा विचित्र लगता है, इसका क्या मतलब है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जैसे हम आपको दो रविवार पहले बता रहे थे कि जितने भी सुभाषित या कहावत मुहावरे आदि हैं उनके पीछे अक्सर छोटी छोटी कोई कहानी होती है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, इस कहावत के पीछे एक छोटी सी कहानी है ना। तो ठीक उसी तरह से ये अर्ध कुक्कुटी न्याय के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक किसान था और उसके पास मुर्गियां भी थीं। उन मुर्गियों में से एक ऐसी मुर्गी थी जो बड़ी अद्भुत थी। ये मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी, एक परंतु सोने का। तो जब किसान ने देखा कि ये सोने का अंडा दे रही है तो बहुत खुश हो गया वो, तो बाजार में जाके बेच देता था और एक सोने के अंडे से बहुत धन उसे प्राप्त हो गया। तो प्रतिदिन ऐसे एक सोने का अंडा मिल जाता था इस किसान को। इस तरह से उसने बहुत धन एकत्र कर लिया। लेकिन आप तो जानते हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो सात्विक बुद्धि के नहीं होते हैं, उनके हृदय में लोभ आना स्वाभाविक है। जितना भी धन किसी के पास क्यों ना हो, यदि उसकी बुद्धि सही ठिकाने नहीं है तो वो तृप्त नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। वो चाहेगा कि मुझे और चाहिए, और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए मुझे, धन 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 चाहिए। जितना भी धन मिले संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये किसान भी ऐसे ही था। उसने सोचा धन तो मिल रहा है, इस सोने का अंडा मिल रहा है, बहुत धन कमा रहा हूं, लेकिन खर्चा भी तो हो रहा है ना। क्या खर्च हो रहा है? अब ये मुर्गी को खिलाना पड़ रहा है। अब देखिए मुर्गी को खिलाने के लिए कितना खर्च होता है, एक मुर्गी को खिलाने के लिए इतना ज्यादा खर्च तो नहीं होता है। और फिर भी खिलाना पड़े तो वो सोने का अंडा जो दे रही है, जो खिलाने के लिए थोड़े एक दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए लग भी जाएंगे, दिन के पचास रुपए भी लग जाएंगे, लेकिन सोने का अंडा मिल रहा है। सोने के अंडे की कीमत कितनी है? बहुत ज्यादा है। फिर भी कंजूस था व्यक्ति, सोच रहा था कैसे पैसे बचाएं, केवल पैसे कमाएं लेकिन खर्च नहीं होना चाहिए। आप में से जो व्यापार करते हैं, आप बताइए, आप खर्च किए बिना कमा सकते हैं क्या? कुछ कमाने के लिए खर्च भी करना चाहिए ना। तो यदि आप कमाना चाहते हैं बिना खर्च किए हुए, तो यह भी अर्ध कुक्कुटी न्याय हो गया। तो ये सोच रहा था किसान कि मुझे सोने का अंडा चाहिए, लेकिन जो मुर्गी को जो मैं खिला रहा हूं वो खर्चा मुझे नहीं चाहिए। तो फिर खर्चा नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? जब तक मुंह है इस मुर्गी का वो खाएगी। तो ऐसा करते हैं, मुर्गी की गर्दन ही काट देते हैं। जब गर्दन काट देंगे तो मुंह नहीं रहेगा, जब मुंह नहीं रहेगा तो खाने का कोई सवाल नहीं है, फिर हम आराम से अंडे लेते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे होगा? नहीं। जब मुर्गी की गर्दन काट दे तो क्या हो गया? मुर्गी की मृत्यु हो गई। जब मुर्गी की मृत्यु हो गई तो सोने के अंडे आने बंद हो गए। लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख था, वो सोच रहा था कि खर्चा बच जाए, मुझे खिलाना न पड़े मुर्गी को, और सोने का अंडा आता रहे। परंतु ऐसे तो संभव नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से थोड़े संसार के अनुभव उदाहरण हमने दिए आपको, लेकिन अब दार्शनिक बात करते हैं। भगवद गीता के संबंध में प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि हमें भगवद गीता जानना है, ठीक से समझना है, तो यथारूप समझ लेना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवद गीता के कोई श्लोक, कई श्लोकों को हम स्वीकार करें जो हमें पसंद हैं, और कोई श्लोक पसंद नहीं है तो उनको हम त्याग दें कि ये मुझे ठीक नहीं लगते हैं। ऐसे नहीं, सारे के सारे 700 श्लोकों को हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया, प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये समझाते हुए वो इस श्लोक को सामने रखते हैं, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, कि हे केशव, मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूं। सर्वम एतत्, आपने जो भी कुछ कहा है, ऋतम मन्ये, मैं उसे सत्य मानता हूं। यन्माम वदसि, आप जो भी कह रहे हो हे कृष्ण, हे केशव, मैं आपकी सारी बातों को, हर एक शब्द को मैं सत्य मानता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भी भगवद गीता को इसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ कहा है वो सत्य मान के चलना चाहिए। एक श्लोक सत्य है, दूसरा श्लोक झूठ है, ऐसा नहीं कह सकते हम। एक श्लोक को मानेंगे, दूसरे श्लोक को नहीं मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने गलत ढंग हैं, तरीके हैं, जिससे कि कई लोग भगवद गीता को पढ़ना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, पहला उदाहरण, ऐसे कई लोग हैं जो भगवद गीता को मानते हैं, कम से कम वो कहते हैं कि हम मानते हैं, परंतु फिर कहते हैं कि हम भगवद गीता मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण बिना भगवद गीता हमें चाहिए, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण तो केवल बोलने वाले हैं ना, वो तो निमित्त है, लेकिन भगवद गीता में जो चीजें हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, कृष्ण को नहीं स्वीकार करते। तो ये कैसे संभव है? भगवद गीता अर्थात भगवान का गीत, अब जिन्होंने गाया है यह गीत उन्हीं को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो यह कैसे भगवद गीता हो गई? यदि भगवद गीता हमें जाननी है तो जिस भगवान ने उसकी गाया है उस भगवान को स्वीकार करना चाहिए। और यदि आप कहेंगे कि हम केवल जो भगवद गीता में कहा गया है उसे मानते हैं परंतु कृष्ण को नहीं मानते, इसका मतलब है कि आपने भगवद गीता पढ़ी नहीं है। क्योंकि भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धभाव समन्विताः। वो कहते हैं कि मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ये भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि का सृजन मैं करता हूं, इसका उद्गम मैं हूं, सब कुछ मुझी से उत्पन्न होता है। तो जो इस बात को भली भांति जान लेता है वो मेरे शरण में आता है, मेरा भक्त बनता है, प्रेम पूर्वक वो मेरी सेवा करता है। तो यदि वास्तव में हम भगवद गीता के वचनों को, श्लोकों को स्वीकार कर रहे हैं तो कृष्ण को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि भगवद गीता में तो यही कहा गया है। एक बार हम एक सज्जन से चर्चा कर रहे थे तो वो कहने लगे कि भगवद गीता में तो कहा नहीं है कि हमें कृष्ण को मानना चाहिए, हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन कृष्ण को क्यों माननी चाहिए? तो हमने कहा भगवद गीता आप मानते हो तो भगवद गीता में लिखा क्या है? भगवद गीता में यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि समस्त धर्मों को त्यागो और मेरे शरण में आ जाओ एकमात्र, यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो क्योंकि लोगों को ज्ञान सही नहीं है, सही तरह से उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी है, और पढ़ी भी है तो अपने मनमाने ढंग से उसका कोई निष्कर्ष या मतलब निकालते हैं, इसलिए अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि हम भगवद गीता को मानेंगे परंतु कृष्ण को नहीं मानेंगे? कई बार आधुनिक काल में भी हमारे कई भक्त यहाँ वहाँ अलग अलग कंपनियों में जाते हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेज आदि में जाते हैं प्रवचन देने के लिए, परंतु अभी समय कुछ ऐसा है आधुनिक काल में, धर्म निरपेक्षता का समय है, तो कहीं भी जाकर पहले जो भी अधिकारी व्यक्ति हैं वो कहते हैं आप भगवद गीता पे बोल रहे हैं, कृष्ण या किसी भगवान के बारे में मत बात करिए, तो फिर कैसे बात करेंगे भाई? तो कभी कभी ऐसी दुविधा हो जाती है कि हमें कुछ, चलो कुछ कहने का अवसर मिला है, लेकिन खुलेआम नहीं कह सकते कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है। कहेंगे नहीं नहीं, धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत का पालन करना चाहिए, तो किसी भगवान की बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर बाध्य होकर जो भी प्रवक्ता हैं उनको ऐसी कोई बातें कहनी पड़ती हैं जिससे कि कम से कम वो भगवद गीता के प्रति थोड़ी श्रद्धा उनके मन में बढ़ जाए। फिर धीरे धीरे से जब वो आने लगेंगे भक्तों के संग में, फिर वो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं। तो ऐसे कोई बात है जैसे कि प्रकृति के तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हमें रजोगुण तमोगुण से बच के रहना चाहिए, हमें सात्विक जीवन स्वीकार करना चाहिए, तो ऐसी सब चीजें उनको बता सकते हैं। आहार तीन प्रकार के होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनसे इनका प्रभाव इस तरह से होता है, इसलिए आहार हमारा सात्विक होना चाहिए, तो ऐसी चीजें ठीक है मान लेते हैं वो लोग। परंतु जब हम भगवान की बात करते हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं है। तो इस तरह कम से कम उनको थोड़ा कुछ कहने का मौका मिलता है, लेकिन पूरा उनको लाभ भगवद गीता का नहीं मिल पाएगा। परंतु ये इच्छा रहती है कि चलो कम से कम भक्तों के संबंध में, संपर्क में आ जाएं, कुछ सुन लें, आगे चल के वो भगवान को जान सकें। तो इस तरह से ये धारणा या ये तर्क कि हमें भगवद गीता चाहिए परंतु कृष्ण नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो ये है अर्ध कुक्कुटी न्याय का एक उदाहरण। उसी तरह से और एक भी उदाहरण इस तरह से है कि आप तो जानते हैं कि भारत में जैसे ही भगवद गीता का नाम लोग सुनते हैं तो तुरंत उनके मुख में कौन सा श्लोक आता है? देखिए बराबर आपने कह दिया, आप सब जानते हैं, भारत में जैसे ही आप भगवद गीता का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ मैं भी कर्म करता हूँ, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, तो मैं यही करता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो मां फलेषु कदाचन उनको पता नहीं होता है, वो होता भी है तो चलो वो सोचते यही गीता का सार है ना। वो आपने पढ़ा होगा ना, कई बार वो दुकानों में घरों में लगाते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुम्हारा क्या था जो है, ये वो बहुत कुछ होता है ना, वो पढ़ा होगा आपने, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये बात जो है सही है, तुम्हारा क्या है कि तुम खोओगे, ये सब ठीक है, लेकिन गीता का सार क्या है? लेकिन कृष्ण का नाम कहीं नहीं दिखता उसमें। वो जो ऐसे बड़ी बनाते हैं, पर्ची आदि बनाते हैं, सब जगह बांटते हैं, बातें तो सही कहते हैं लेकिन सार भगवद गीता का अवश्य वो नहीं है। भगवद गीता का सार है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, कि हे कृष्ण मेरा, हे अर्जुन तुम मेरा भक्त बनो, सदैव मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो और तुम मेरे पास निश्चित लौट के आओगे। मैं सत्य कह रहा हूं अर्जुन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण झूठ बोलने के लिए नहीं आए यहां पर, सत्य बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन कहते हैं सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ऋतम मतलब सत्य, तो सत्य ये है, ये सार ये है कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये भगवद गीता का सार है। परंतु इसे नहीं जानते हैं लोग, तो तरह तरह के और चीजें कहते हैं, अपना कर्म करते रहो। नहीं, केवल कर्म करते नहीं रहना है, किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए, किस तरह के कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएंगे, कर्म सिद्धांत को भली भांति जान लेना चाहिए, किन के हवाले हमें हमारे कर्मों को समर्पित करना चाहिए, किन के संतुष्टि के लिए कर्म करने चाहिए, ये सब कर्म सिद्धांत है, न कि केवल कर्म करते रहो दिन रात मेहनत करते रहो, ये भगवद गीता का सार नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते ये पसंद करते हैं, परंतु मन मना भव मत भक्तो कि मुझे भक्त बनो, ये नहीं स्वीकार करते। कहते मुझे भगवद गीता का ये भाग अच्छा लगता है कि हमें कर्म करते रहना है, लेकिन ये भगवान का भक्त बनना है ये हमें पसंद नहीं है, तो हम ये नहीं स्वीकार कर सकते। तो ये हुआ अर्ध कुक्कुटी न्याय। और एक उदाहरण आपको देते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसे भारतवर्ष में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भारत के, भारत जब स्वतंत्र देश हुआ लगभग 70 साल पहले, तो उस समय बहुत एक प्रसिद्ध राजनेता थे जो भगवद गीता को मानते थे, भगवद गीता के बारे में कहते भी थे कुछ, तो उनका मानना था कि भगवद गीता में अहिंसा, भगवद गीता अहिंसा का शास्त्र है। और ये अवश्य सत्य है कि भगवद गीता में अहिंसा के बारे में कहा गया है, अहिंसा का पालन हम सबको करना चाहिए अवश्य। परंतु भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को कही अहिंसा करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए। भगवद गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कोई हिमालय में आश्रम में नहीं दिया, उन्होंने एक युद्ध भूमि पर दिया जबकि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। और जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, हिचकिचा रहे थे, डामाडोल हो गए थे, उस समय अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया उनको। यदि भगवान श्री कृष्ण कहते युद्ध करो और रुक जाते तो अर्जुन युद्ध नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि क्यों अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक कहे, अर्थात भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें से अर्जुन ने भी थोड़े कहे, संजय ने कहे, इतने सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे अर्जुन से ताकि वो युद्ध करे, हिंसा करे। और दूसरे जगह भगवान ये भी कहते हैं कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो जो केवल अहिंसा को स्वीकार करता है, हिंसा को नहीं, वो भगवद गीता को नहीं जान पाएगा। जो केवल हिंसा को स्वीकार करता है कि भगवद गीता में कहा गया हिंसा, युद्ध कर, केवल युद्ध ही करते रहा, अहिंसा क्या चीज है नहीं जानता, तो उसकी समझ भी अधूरी रह जाएगी। तो दोनों ही अपने जगह में अर्ध कुकुट्टी न्याय के शिकार बन गए। भगवद गीता में दोनों चीजें हैं, हिंसा भी है अहिंसा भी है। कब हिंसा करनी चाहिए, इसके लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। और कब अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, यह भी हमें जान लेना चाहिए। देखिए संसार में हिंसा के बिना हम रह नहीं सकते। अभी अवश्य हम सब शाकाहारी हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, मांसाहार आदि नहीं करते हैं क्योंकि हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं, आप कहते हैं कि आप पशु हत्या नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह हिंसा है, परंतु आप जो सब शाकाहारी हो, आप भी तो पेड़ पौधों की के प्रति हिंसा करते हो ना। तो उनका कहना भी सही है, हाँ हम करते हैं पेड़ पौधों की प्रति हिंसा, परंतु केवल जब अनिवार्य है, जब और कोई चारा नहीं है तब। आए गए बस पेड़ों को काटना, क्योंकि ये ऐसा हम नहीं करते। हम खेती करते हैं, फिर वहां कोई फसल होती है तो फसल को हमें काटना पड़ता है, फिर सब्जियां उगाते हैं सब्जियों को काट देते हैं, फल पेड़ों पे फल होते हैं तो फलों को निकालते हैं पेड़ों से खाते हैं। इस तरह से हम भोजन स्वीकार करते हैं मनमाने ढंग से, यहां वहां सब कुछ, पेड़ों को काट दिया, ऐसे करना भी ठीक नहीं है। फिर भी फसल को काट रहे हैं, अनाज को काट रहे हैं, वो भी तो हिंसा है। तो भागवत में बता गया है जीवो जीवस्य जीवनम, कि यह संसार में एक जीव के लिए दूसरा जीव ही आहार है, भोजन है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो केवल जल के ऊपर जीता है, कोई दूध के ऊपर जीता है, परंतु दूध भी लेते हैं तो उसमें भी कोई कीटाणु हो सकते हैं, जब सांस लेते हैं तो कोई कीटाणु आ सकते हैं हमारे नाक के अंदर। इसलिए कई एक धर्म के जो साधु होते हैं वो ऐसे कपड़ा पहन के जाते हैं नाक के ऊपर, ताकि सांस लेते समय भी कोई कीटाणु अंदर जाके मर न जाए। कहने का मतलब है कि हिंसा के बिना इस जीवन, इस संसार में हम रह नहीं सकते। सांस लेना बंद नहीं कर सकते, अब जमीन पे चलना बंद नहीं कर सकते, चलते चलते न जाने कीटाणु कोई पैर के नीचे आ जाए, कुचल दिया जाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल परवाह नहीं करें कि चलो जो हिंसा हो रही है होने दो, हम सोचते हैं कम से कम हिंसा हो, केवल जो हमारे जीविका के लिए जितना आवश्यक है, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, कम से कम, और वो भी जो जिसके लिए अनुमति दी गई है शास्त्रों में, जो वर्जित नहीं है, ऐसे ही कार्यों को इतनी मात्रा में ही और इस प्रकार की ही हिंसा हम कर सकते हैं, इससे अतिरिक्त इससे बाहर करना पाप है। और इतना करने से भी पाप होगा यदि हमने इन चीजों को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं किया। इसलिए हम लोग केवल शाकाहारी नहीं हैं, हम प्रसाद आहारी हैं। हम प्रसाद स्वीकार करते हैं, शाकाहारी भोजन भगवान कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो फिर ये पाप कहलाता है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वकं पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं जो यज्ञ का अवशिष्ट है, अर्थात जो भगवान कृष्ण को अर्पण करने के बाद ग्रहण किया जाता है, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु को हम ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो हम साक्षात प्रत्यक्ष पाप ही खा रहे हैं। तो इसलिए हिंसा क्या है, कितनी हिंसा, किस प्रकार की हिंसा, कब वो वर्जित है, कब नहीं है, ये सब जानने के लिए भगवद गीता का ज्ञान आवश्यक है। तो केवल हम यदि कहें कि भगवद गीता में अहिंसा का रास्ता बताया गया है, ये पूरा सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है ये। तो इसलिए दोनों चीजों को समझना चाहिए, ना कहना चाहिए केवल हिंसा और ना कहना चाहिए कि केवल अहिंसा, दोनों को ठीक ठाक हमें समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से और एक अर्ध कुक्कुटी न्याय का उदाहरण देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कोई एक भगवान है, एक परम सत्य है, तो कई मानते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, भगवान का व्यक्तित्व नहीं है। दूसरी ओर ऐसे कोई लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान का केवल रूप ही है, कोई निराकार ही बिल्कुल झूठ है, परंतु दोनों ही अपने आप में अपूर्ण हैं। यदि कोई कहे कि भगवान केवल निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो ये अर्ध सत्य है, अर्ध कुक्कुटी न्याय है। और कोई कहे भगवान का केवल रूप है, केवल आकार है, और निराकार कोई उनका स्वरूप नहीं है, तो वो भी आधा अपूर्ण ज्ञान है। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य को जानना है तो तीन स्तर पे जाना जा सकता है। एक है जो निराकार ब्रह्म आध्यात्मिक ज्योति है, दूसरा है जो परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और तीसरे है इन दोनों के उद्गम या स्रोत परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ जगत में निवास करते हैं। तो इन तीनों को जानना ये पूर्ण ज्ञान है। यदि हम कहें कि हम बस निराकार को मानेंगे तो ये अर्ध कुक्कुटी न्याय हो जाता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अनेक उदाहरण देते हैं इसके लिए, कैसे हमें किसी चीज को आधा नहीं समझना चाहिए, पूर्णतया स्वीकार करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान संपूर्ण है, इसलिए आकार निराकार दोनों ही उनमें सम्मिलित होने चाहिए। वो केवल निराकार या केवल आकार से युक्त नहीं हो सकते। और एक बात, और एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि कई ऐसे लोग जब भगवद गीता को पढ़ते हैं तो वो भी अपने मनमाने ढंग से कुछ अर्थ निकालते हैं भगवद गीता का। कोई लोग कहते हैं कि भगवद गीता को हमें जैसे कृष्ण कह रहे हैं वैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये सारी घटनाएं जो हुई, युद्ध आदि, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, और कुरुक्षेत्र अर्थात ये शरीर है, पांच पांडव अर्थात ये हमारे पांच इंद्रियां हैं, और फिर कौरव ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो इस तरह से वो अपने मनमाने ढंग से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थान है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवत गीता के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत। इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र एक स्थान है, आज भी है। आप में से कई भक्त कुरुक्षेत्र गए होंगे, लेकिन जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी, जिसका वर्णन महाभारत में है और भगवद गीता में, वो केवल आज का जो कुरुक्षेत्र नगर है उतना ही नहीं है। वो बहुत लंबी चौड़ा स्थान था। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे खेल का मैदान है, ऐसे युद्ध भूमि नहीं था, सैकड़ों मीलों तक ही फैला हुआ था। तो फिर भी एक ऐतिहासिक स्थान है। हम भगवत गीता को मानते हैं लेकिन इसकी ऐतिहासिकता को नहीं मानते, ये भी नहीं हो सकता। ये भी अर्ध कुक्कुटी न्याय है, आधा मानना। जो हमें पसंद है हम माने, हमारे मन माने ढंग से हम किसी चीज को स्वीकार करें और किसी चीज को त्यागें। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता के दर्शन को मानते हैं, फिलॉसफी को, परंतु ये सब संकीर्तन है, ये सब उनको पसंद नहीं है। ऐसे एक अमेरिका में विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि ठीक है, आप लोग इतना सब कीर्तन करते रहते हैं कि आपको दर्शन क्या है आपके शिष्यों को पता नहीं है। तो दर्शन ठीक है, लेकिन ये कीर्तन करना, संकीर्तन करना, ये सब हम नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि दर्शन का फल है संकीर्तन करना। जब आप सारा दर्शन जान जाएंगे, भगवत गीता का सार जान जाएंगे कि हमें श्री कृष्ण के शरण में जाना है, उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर आप उनका नाम लेंगे ही लेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च द्रवर्ता, तो सतत कीर्तन करना चाहिए हमें। और यदि आप कहें कि नहीं नहीं, सतत कीर्तन करने का मतलब कुछ और है, ये घटना शायद मैंने आपको एक बार पहले कभी बताई होगी, कई साल पहले जब मैं नया ब्रह्मचारी था, तो पुस्तक वितरण के लिए बाहर निकला था। तो जाते जाते हम सड़क, अकेला था तो लेके थैली वगैरह हाथ में थी, तो एक बहुत बड़ा मैदान था वहाँ पास में। वहाँ मैंने देखा कि एक सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी नहीं थे लेकिन बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, और उनका को गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा था, और पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे थे, कुर्सियां लगी हुई थी। मैंने सोचा चलो सुनते हैं। मुझे याद था कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि मायावादियों का भाष्य सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, सर्वनाश होगा आध्यात्मिक जीवन का यदि मायावादियों का प्रवचन आदि सुनोगे तो। क्योंकि वो क्या कहते हैं, परम सत्य निराकार है, ये सब जगत मिथ्या है, ऐसी सब बातें कहते हैं जिससे कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो हमने सोचा फिर भी सुन लेते हैं ना क्या बोलते हैं। तो गए तो हमारे गहरे वस्त्र, तिलक, बाल नहीं, ये सब देखकर जैसे हम पीछे से आए तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। उन्होंने देखा कि तुरंत समझ गए हरे कृष्ण वाले आए, है ना। और दैव से देखिए, वो इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वर्ता। मुझे जैसे ही देखा तो उन्होंने अपनी बोली बदल दी, फिर कहने लगे, अरे जब कृष्ण, अंग्रेजी में बोल रहे थे कि जब यहां कहा गया है भगवत गीता में सततम कीर्तयन्तो माम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करना चाहिए। तो मेरे भलाई के लिए वो बोल रहे थे ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे अभी हरे कृष्ण हरे राम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं बैठ गया, खाली कुर्सी थी वहां बैठ गया, तो मुझे देखा तो मेरे लिए ही प्रवचन 10 मिनट उन्होंने दे दिया। देखिए, दुनिया में जब कोई बहुत ज्यादा बुराई होती है सहन करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा भलाई को भी सहन करना मुश्किल होता है। तो इतना भला मेरे साथ हो रहा था कि वो सहन नहीं हो रहा था, तो हम वहां से उठ के चले गए। तो ऐसे है, तो वो लोग ऐसे अपना मनमाने ढंग से तोड़ मोड़ करके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि अपना अपना कुछ कहने लगे। सततम कीर्तयन्तो का मतलब क्या है, वो अपना कुछ कहने लगे। तो ऐसे नहीं समझा जा सकता, ये सब अर्ध कुक्कुटी न्याय है। जैसे भगवान कहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। केवल हम दर्शन स्वीकार करेंगे, संकीर्तन नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं हो सकता ऐसे। पूरा संपूर्ण जितने भी श्लोक हैं भगवद गीता के, वो सारे हमें स्वीकार करने चाहिए। और ऐसे जो मायावादी लोग होते हैं या और भी जो होते हैं भौतिकतावादी लोग, जिनको श्रद्धा नहीं है, ऐसे श्रद्धाहीन लोग जब भगवद गीता के ऊपर टीका करने जाते हैं तो श्री कृष्ण की निंदा भी करते हैं। कहते हैं ठीक है, ये सब तीन प्रकृति के तीन गुणों की बात है, कर्म योग की बात है, ये सब आप पढ़ लीजिए, परंतु जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रश्न आता है हम इनको नहीं मानते हैं। ये सब दंत कथा है, ये सब काल्पनिक है, केवल कहानियां हैं ये सब। लेकिन ऐसा नहीं, जब भगवद गीता में भगवान कृष्ण का है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, जो ये जान लेता है तत्वतः कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही अलौकिक हैं, दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो न केवल भगवान का जन्म, परंतु भगवान के जितने भी कर्म हैं, जितने भी कार्य हैं, वो लीलाएं हैं, साधारण कर्म नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और इस श्लोक को भी पढ़ लेता है और फिर भी भगवान की लीलाओं को दंत कथा या कोई काल्पनिक चीज मानता है, तो इसका मतलब है कि वो समझ नहीं पा रहा है, अपने मन माने ढंग से किसी चीज को स्वीकार कर रहा है, किसी चीज को त्याग रहा है। यदि भगवत गीता आप स्वीकार कर रहे हैं, भगवत गीता के दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के लीलाओं को भी स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए कि ये भी सत्य है। दूसरी ओर ऐसे भी थोड़े लोग होते हैं जो केवल गिने चुने लीलाओं को मानते हैं, जो उनको लीलाएं पसंद हुई वो उनको मानते हैं, जो पसंद नहीं हो उन लीलाओं को नहीं मानते। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश थे, उन्होंने एक बार एक बहुत ही गलत बयान दिया, बहुत ज्यादा गलत। उनका कोई काम नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था ऐसे कहने के लिए। कोई बात निकली थी, कोई मुद्दा अदालत के सामने आया था, किस संबंध में, विवाह के संबंध में या कुछ ऐसे विवाह था, मुद्दा था, तो उस न्यायाधीश ने कह दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ ऐसे करते थे तो इन दोनों को बिना विवाह एक साथ रहने में क्या समस्या है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऐसे अदालत में बैठकर घोषणा करते हैं तो वास्तव में बहुत हलचल तो मच गया। तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इसका और कहा कि न्यायाधीश जी, आप बस आपके न्याय के ऊपर सीमित रहिए, जो आपकी किताबें हैं उन पर सीमित रहिए, आप इस क्षेत्र में आप प्रवेश मत कीजिए, ना ज्ञान है ना कुछ, बस भगवद गीता कृष्ण लीला के ऊपर कुछ बोलने लग गए। तो यदि तो ये बहुत ऐसी एक बात है जो कई लोग कहते हैं, कृष्ण ने जब इतने सारे गोपियों के साथ में रासलीला किया तो हमने भी यहां वहां कुछ कर लिया तो क्या समस्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि ठीक है, आप श्री कृष्ण की नकल करना चाहते हो ना तो पूरी तरह से नकल करो ना। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं कि केवल रासलीला की नकल करोगे और गोवर्धन लीला की नकल नहीं करोगे। तो रासलीला की नकल करना चाहते हो तो गोवर्धन धारण भी नकल करो, उठाओ गोवर्धन पर्वत, वो नहीं हो पाएगा उनसे। अब गोवर्धन पर्वत की बात तो दूर रही है, छोटे पत्थर को भी उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ी लीलाओं को स्वीकार करना, थोड़ी लीलाओं को स्वीकार नहीं करना, ऐसे नहीं। आप रासलीला को मानना चाहते हो ना तो फिर गोवर्धन लीला को भी मानो। जब गोवर्धन लीला को मानोगे तो जानोगे कि आप रासलीला की नकल नहीं कर सकते। तो जब उन्हें ऐसे बताया जाता है वो कहते हैं ये नहीं नहीं ये गोवर्धन लीला ये सब काल्पनिक चीजें हैं। यदि गोवर्धन लीला काल्पनिक है तो रासलीला भी तो काल्पनिक है ना, कि उसी जगह उसी ग्रंथ में तो बताए हैं ना दोनों चीजें। गोवर्धन लीला का वर्णन और रासलीला का वर्णन दोनों ही श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णित है। तो ऐसा नहीं कि आप एक लीला स्वीकार कर लो दूसरी लीला त्याग लो, ये अर्थ कुक्कुटी न्याय हो जाएगा। इसलिए इस भगवान के समस्त लीलाओं को स्वीकार करना चाहिए। ये सारे लीलाएं सत्य हैं, ऐतिहासिक हैं और बहुत मधुर हैं। लीला माधुरी भगवान श्री कृष्ण का एक ये विशेष गुण है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये भी एक गलती हो जाएगी हमारी। और ऐसे भी कई योगी होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मानते हैं या सोचते हैं कि हम भी भगवान हैं। मैं कई बार ये बता चुका हूं आपको कि जब हम वृंदावन में रहते थे, राधा श्याम सुंदर प्रभु याद होगा कि वो दो मायावादी सन्यासी आते थे भागवत क्लास के बाद, अंग्रेजी भागवत क्लास के बाद, और कृष्ण बलराम के सामने खड़े होकर अपने एक दंड ऐसे ऐसे उठाते थे ना। जब उनसे पूछा गया कि क्यों उठाते हो, कहते हम एक हैं, कृष्ण बलराम से एक हैं, तो अपने आप को एक मानते हैं। और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ है तो हमारे अंदर भी सब कुछ है। ठीक है, आपके अंदर सब कुछ है तो फिर आप भी विराट रूप दिखाइए, वो नहीं दिखा पाएंगे। ये भी अर्ध कुकुटी आधा आप नहीं कर सकते। कृष्ण के अंदर सब कुछ है और हम भी कृष्ण हैं तो हमारे अंदर भी सब कुछ है। तो ठीक है, कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया था ना, तो आप भी दिखाइए विराट रूप, वो आप नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे सब चल रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। और साधारण जो लोग हैं मासूम हैं वो गुमराह कर देते हैं इन लोगों को। गुमराह जो मासूम लोग हैं पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत तरह तरह के गलत सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके बहुत नुकसान होता है सारे समाज में। और कई लोग ऐसे भी मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन बलराम जी को नहीं मानते। यहां दक्षिण भारत में ऐसे कई पंथ हैं जो ऐसा कहते हैं। ये भी कहते हैं हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन राधा रानी को नहीं मानते, कैसे हो सकता है। शक्तिमान को मानते हैं शक्ति को नहीं मानते हैं, क्या मतलब इसका। अर्ध कुक्कुटी न्याय, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं अर्चा विग्रह को नहीं मानते। ऐसे भी कई पंथ हैं जिनकी धारणा ऐसी होती है। तो यदि आप मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं तो क्या भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। तो हैं, यदि वो सर्वशक्तिमान हैं तो क्या वो भौतिक पदार्थों में प्रकट नहीं हो सकते मूर्ति के रूप में, अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, क्यों नहीं हो सकते। तो फिर आप क्यों नहीं मानते हैं कि अर्चा विग्रह भी भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। हाँ, मनमाने ढंग से हम कोई पुतली तैयार करते हैं, कहते हैं कि ये भगवान है, वो गलत है। परंतु जो शास्त्र में वर्णन है और जो महान आचार्य में गुरु परंपरा में जिन्होंने वर्णन किया है ऐसे वर्णन के आधार पर यदि हमने शिल्प शास्त्र के अनुसार यदि विग्रह की स्थापना की है तो फिर वो सही है। तो ये कहना कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के विग्रह को नहीं मानते, ये भी ठीक नहीं हो सकता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी एक बार भी कहते हैं, केवल अपने गुरु को मानना परंतु गुरु परंपरा में और जितने पूर्व आचार्य हुए हैं उनको नहीं मानना, बस मेरे गुरु ही केवल एकमात्र हैं और जितने भी परंपरा में गुरु है उनको हम नहीं मानेंगे, ये भी नहीं है। हमारे गुरु वो आए कहां से, उन्होंने भी तो गुरु परंपरा से ज्ञान स्वीकार किया ना, और उन्होंने कहां से किया, उन्होंने भी आगे अपने गुरु से किया। तो ये है गुरु परंपरा की श्रृंखला। तो केवल अपने गुरु को मानना और पूर्व जो आचार्य है उनको नहीं मानना, ये भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी जब एक बार एक ईसाई पादरी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान से प्रेम करना ये हमारा उद्देश्य है और आप भी इस बात को मानते हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ हम भी मानते हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो जब भगवान से प्रेम करना चाहिए तो उनकी बातों को मानना चाहिए या नहीं, मानना चाहिए। तो आपके जो 10 आदेश हैं उनमें से सबसे पहला आदेश है कि आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, thou shalt not kill, ये आपका पहला आदेश है। तो आप मासूम जानवरों की हत्या क्यों करते हो, क्यों खाते हो उनको, बकरियों को गायों को मार के खाते हो आप क्यों, जबकि भगवान ने आपको आदेश दिया है कि हत्या नहीं करो। तो वो इस तरह से उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि ये केवल मनुष्यों के लिए है कि मनुष्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे तो नहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ केवल हत्या लिखा है। तो इस तरह से आप अर्ध कुकुट्टी न्याय नहीं कर सकते, जो आपको पसंद आए वो आपने स्वीकार किया, जो पसंद आए नहीं पसंद आए उसे त्याग दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। चैतन्य चरितामृत में एक लीला है जो कृष्णदास कविराज जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। कृष्णदास कविराज के घर में एक बार एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ, संकीर्तन आदि हुआ, तो वहां पर गुणार्णव मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे जो उनके घर के विग्रहों की सेवा कर रहे थे। सारे भक्त वहां इकट्ठे हुए थे तो उस समय श्री नित्यानंद प्रभु के एक निकट के पार्षद जिनका नाम था मीनकेतन रामदास वहां पर आए। तो वो बहुत ही महान भक्त थे और नित्यानंद प्रभु की तरह ही वो भी एक अवधूत थे, बहुत ही ऊंचे स्तर के भक्त थे वो। तो जब वो अंदर आए सभा में तो गुणार्णव मिश्र को चाहिए था कि वो उन्हें सम्मान दिखाए, परंतु क्योंकि वो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे सम्मान नहीं दिखाया उनको। तो गुणार्णव मिश्र तो मीनकेतन रामदास सोचने लगे ये तो मेरे प्रति नहीं, मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु के प्रति अपमान हुआ है। और जब मीनकेतन रामदास वहां से जा रहे थे तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के साथ मीनकेतन रामदास की थोड़ी बहस हो गई। बहस इसलिए हुई कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई चैतन्य महाप्रभु को मानते थे परंतु नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। तो फिर कविराज गोस्वामी ने डांटा अपने भाई को कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मीनकेतन रामदास के चरणों में अपराध किया, अर्थात नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध करना, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध। आप चैतन्य महाप्रभु के को मानते हो परंतु नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, ये अर्ध कुक्कुटी न्याय हो गया, दोनों ही एक हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक को मानते हो दूसरे को नहीं मानते हो, ऐसे नहीं संभव है। इसलिए दोनों को मानना चाहिए, या तो फिर आपको कहना चाहिए कि आप नास्तिक हो और दोनों को नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पे हमारे मंदिर राधा गोकुल आनंद मंदिर में भी यहाँ गौर निताय दोनों विराजमान हैं कृपा बरसाने के लिए। तो हमें दोनों को मानना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, एक को मानेंगे दूसरे को नहीं फिर ये अर्ध कुक्कुटी न्याय हो जाएगा। और उसी तरह से हम केवल कहेंगे कि भक्ति में केवल कृष्ण कथा है और कीर्तन नहीं है प्रसाद नहीं है तो ये भी अर्ध कुक्कुटी न्याय हो जाएगा। इसलिए अभी प्रवचन समाप्त करने का समय आया है क्योंकि भक्ति के अन्य अंगों का पालन भी हमें करना है, कीर्तन करना है और फिर जाके कृष्ण प्रसाद का सेवन भी करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।